हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 4 और 5। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदीयुत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि में भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद सातवां अध्याय जिसका शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड, श्लोक नंबर 4। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सुत गोस्वामी बता रहे हैं, भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिति मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्। भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्। भक्ति भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम् भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम् भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्। शब्दों का अर्थ भक्ति अथवा भक्ति योगेन संयुक्त होने की विधि द्वारा मनसी मन में सम्यक अर्थात पूर्णतया प्रणीते संलग्न तथा स्थिर अमले यानी निर्मल अपश्यत देखा पुरुषम भगवान को पूर्णम परम माया अर्थात शक्ति को च भी तत् उसके अपाश्रयम पूर्ण वश में। अनुवाद, इस प्रकार उन्होंने भौतिकता का स्पर्श किए बिना भक्ति योग से बंध कर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर की वशवर्तिनी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भक्ति योग द्वारा ही परम सत्य का सम्यक दर्शन किया जा सकता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी हुई है। मनुष्य केवल भक्ति योग द्वारा ही पूर्ण भगवान की सही सही अनुभूति प्राप्त कर सकता है और ऐसे सम्यक ज्ञान के बल पर ही वह भगवत धाम के में प्रवेश कर सकता है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतीत करके कोई भगवत धाम नहीं जा सकता। श्री नारद जी ने वेद व्यास को उपदेश दिया कि वे भगवान तथा उनकी दिव्य लीलाओं के ध्यान में निमग्न हो जाएं। श्री वेद व्यास को ब्रह्म ज्योति नहीं दिखलाई पड़ा, श्री वेद व्यास को ब्रह्म तेज नहीं दिखलाई पड़ा क्योंकि यह पूर्ण दृष्टि नहीं है। पूर्ण दृष्टि तो भगवान है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 7.19 में बताई गई है। वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। उपनिषदों में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि भगवान वसुदेव निर्विशेष ब्रह्म के हिरणमयन मात्रेण द्वारा आच्छादित हैं। और अब जब भगवत कृपा से यह आवरण हटता है तभी भगवान का वास्तविक मुख दिखता है। परम ब्रह्म को यहाँ पर पुरुष या व्यक्ति कहा गया है। परम भगवान का उल्लेख अनेक वैदिक ग्रंथों में हुआ है और श्रीमद् भगवद गीता में तो पुरुष की पुष्टि नित्य तथा आदि पुरुष के रूप में हुई है। भगवान पूर्ण पुरुष हैं, परम पुरुष की अनेक शक्तियां होती हैं, इनमें से अंतरंगा बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियां विशेषतया महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर बहिरंगा शक्ति का वर्णन हुआ है जैसा कि उसके कार्यकलापों के वर्णन से स्पष्ट हो जाएगा। अंतरंगा शक्ति परम पुरुष के साथ थी, उसी प्रकार रह रही है जिस प्रकार चांद के साथ चांदनी रहती है। बहिरंगा शक्ति की तुलना अंधकार से की गई है क्योंकि यह जीवों को अज्ञान के अंधकार में रखती है। अपाश्रयम शब्द इस बात का सूचक है कि यह शक्ति भगवान के पूर्ण वश में होती है। अंतरंग शक्ति या पराशक्ति माया भी कहलाती है। किंतु यह आध्यात्मिक माया होती है, अर्थात परम जगत में ही यह प्रकट होती है। जब कोई इस अंतरंग शक्ति की शरण में आता है तो भौतिक अज्ञान का अंधकार तुरंत ही दूर हो जाता है। यहाँ तक कि जो आत्मा राम है, अर्थात समाधिस्थ रहते हैं, वे भी इस माया या अंतरंग शक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। भक्ति या भक्ति योग इसी अंतरंग शक्ति का कार्य है। इस प्रकार अपरा शक्ति या भौतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जिस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के तेज के समक्ष अंधकार को कोई स्थान नहीं मिल पाता, ऐसी अंतरंग शक्ति निराकार ब्रह्म ज्योति से मिलने वाले आध्यात्मिक आनंद से भी बढ़कर है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि निराकार ब्रह्म तेज भी भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हुआ है। साक्षात श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई परम पुरुष नहीं है, नहीं हो सकता, जैसा कि आगे के श्लोकों में बताया जाएगा। श्री प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणं। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंध सातवां अध्याय द्रोण पुत्र का गो दंड। तो कल हमने पढ़ा कि सूत गोस्वामी से शौनक ऋषि ने पूछा कि नारद जी के चले जाने पर निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायण श्रुत तद भी प्रेत ततः किम करोत विभु के उनके अभिप्राय को सुनने के बाद उन्होंने नारद मुनि ने जब उनको बताया कि आपको भागवत महापुराण का लिखना चाहिए, उनका संकलन करना चाहिए, भगवान की लीलाओं के विषय में बताना चाहिए, तो फिर उन्होंने क्या किया? तब सूत गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिम तटे के उस पश्चिम तट में सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर जिसका आश्रम था, नाम क्या था? शम्य प्रास इति प्रोक्त ऋषिणाम सत्रवर्धनम, उसका नाम था शम्य प्रास। और वहां पर कंटिन्यूअस ऋषिगण भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। तस्मिन् सो आश्रमे व्यासो बदरी शंड मंडले, और ऐसे आश्रम में जो कि बेरों के वृक्षों से घिरा हुआ था, व्यास देव आसीनोपृश्य प्रणिध्य मनः स्वयं, एक जगह पर बैठ गए, आसीन हो गए और अपने मन को स्थिर किया। तो स्थिर कैसे किया अपने मन को? क्या मन को पकड़ के इधर भाग रहा था, उसको पकड़ के लेके आए, या फिर कैसे स्थिर किया? तो आज बता रहे हैं भक्ति योगेन मनसि, कि भक्ति के द्वारा, भक्ति योग, एकमात्र भक्ति योग ही मन को स्थिर करने का तरीका है। अब भक्ति योग किसे कहते हैं? नवधा भक्ति होती है, नाइन प्रकार के भक्ति के ना ये कार्य होते हैं जिससे कि मन को वश में स्थिर किया जा सकता है। जिसमें प्रथम है श्रवण। कोई भले मंदबुद्धि व्यक्ति हो, यदि उसके अंदर इच्छा है श्रवण करने की, तो आप कोई भी स्टोरी सुनाओगे भगवान के विषय में, या फिर कोई भी लीला सुनाओगे, कुछ भी, तो क्या करेगा? बोलते छोटा बच्चा भी होता है ना, उसको भी अगर हम श्रवण कराने के लिए बोले तो हाँ हाँ ऐसे बोलेगा। उसके बाद क्या हुआ? फिर हम बोलेंगे कृष्णा आए, फिर कृष्णा ने ऐसे है ना उसको कालिया को जोर से गुस्सा मारा, फिर बोलेगा अच्छा, फिर मतलब श्रवण करने से क्या होगा? आपका मन स्थिर होगा। मन का स्थिरता, मन की सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस क्या है कि मन विचलित रहता है ना, कभी उसके बारे में सोचता है, कभी उसके बारे में सोचता है, कभी उसके। तो मन भगवान के चरणों में स्थित हो जाए, उसका एक ही उपाय है भक्ति योग। भक्ति योग के द्वारा जब हम श्रवण करते हैं या फिर जब हम कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन में भी क्या होता है, श्रवण ही होता है ना, हम श्रवण कर रहे हैं। जैसे कीर्तन हो रहा होता है तो प्रभु लोग जब कीर्तन करा रहे होता है कोई, तो फिर कोई साउंड उठाता है, फिर हम उसको जोर से मतलब गौर से सुन रहे होते हैं कि मुझे ये साउंड इस तरह से पिक करनी है, तो मन उसी में लगा हुआ है। उस टाइम पर मन ये नहीं सोच सकता, दूसरी चीज सोच नहीं सकता। अगर आप कीर्तन कर रहे हो कंस्टेंट के साथ, वो सुनोगे और सुन के बाद आप क्या सोचोगे कि मुझे भी इसी तरह से फॉलो करना है, गाना है। और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरम, स्मरण करने में तो मन एकाग्र होता ही है कि याद कर रहा है कि मुझे याद करना। जैसे आप कहीं पर भी हो, आप देखोगे मेरे भगवान के भोग लगाने का समय हुआ है, या फिर अक्सर हम लोग जब बाहर होते हैं संध्या का समय होता है, फिर हम मन डायरेक्ट से कृष्ण के अंदर जाता है कि नहीं मैं बाहर क्यों हूँ, जल्दी से ड्राइव करना है, जल्दी से पहुंचना है, संध्या का टाइम हो जाए, मुझे भगवान की आरती करनी घर पे। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदात भक्ति जो है ऐसी है जिसके द्वारा मन जो है वो भगवान में स्थिर हो जाता है। तो सुत गोस्वामी कहते हैं, भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणीते मले, सम्यक मतलब पूर्णतः से, प्रणीते का मतलब होता है संलग्न तथा स्थिर, समय पूरी तरह से स्थित हो गया। जब भक्ति योग उन्होंने स्टार्ट किया, भगवान के विषय में श्रवण करना, भगवान के विषय में कीर्तन करना या भगवान को स्मरण करना, किसी भी भक्ति के अंदर अपना मन लगाओ तो सम्यक पूर्णतया, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा मन कहीं बाहर भी जा रहा, नहीं, मन पूरा का पूरा सम्यक प्रणिहिते मले, प्रणिहिते संलग्न तथा स्थिर, अमले मतलब निर्मल, अमल हो गया बिल्कुल, उसके अंदर अब कोई मलिनता नहीं रही, यानी भगवान का ध्यान करने लगे वो। भक्ति योग का मतलब है अभी वो क्या कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले भी उसमें पढ़ा कि पाणि धर्मो मन स्वयं, कि उसने अपने मन को भगवान के ध्यान में लगाया, समाधि में स्थित हो गए, और जब वो समाधि में स्थित होकर भगवान का ध्यान करने लगे तो क्या हुआ, सम्यक प्रणिहिते मले, उनका चित्त जो है वो अमल हो गया। मल का मतलब होता है मलिनता, गंदगी, और अमल का मतलब होता है पवित्रता। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि वेद व्यास जी के मन में कौन सी अपवित्रता थी, कौन सा मल था जो कि भगवान का ध्यान करने से पवित्र हो गए, और कोई नहीं, वास्तव में चांचल्य ही उनके मन की मलिनता थी, मतलब चंचलता कि ये करना है वो करना, बहुत बहुत शास्त्र लिखने हैं, अबे मुझे लोगों का कल्याण करना है, बहुत सारा मुझे मैं ये करना है वो, मतलब जब मन में होता है कि बहुत सारे कार्य करने हैं तब मन चंचल होता है कि पता नहीं ये कंप्लीट हो जाएगा फिर वो करूंगा, ये कंप्लीट हो जाएगा अभी वो भी करना है, अभी वो भी करना, तो ये चंचलता है। तो मन की चंचलता ही मल है। यदि किसी व्यक्ति के का मन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं और जा रहा है तो समझो उसका मन अपवित्र है। और उसका कारण क्या है, कहीं और जा रहा है तो उसका कारण क्या होगा, कामना, इच्छा, क्योंकि मन इच्छा करता है ना, तो इच्छा जब हृदय में उत्पन्न होती है तो सबसे पहले वो मन मन के ऊपर अटैक, क्योंकि मन ही इच्छा कर रहा है तो मन उसके इच्छा के कंट्रोल में आ जाता है। फिर क्या होता है, फिर मन जो है वो इंद्रियों को अपने कंट्रोल में ले लेता है। और इसी तरह से यदि हम अभी जैसे अभी भागवतम हम श्रवण कर रहे हैं तो हमारे मन में पहले ये इच्छा हुई कि चलो अभी श्लोक आ गया है, थोड़ा टाइम है हमारे पास तो अभी श्लोक सुन लेती हूँ, ठीक है। उस टाइम पर जब मन ने ये विचार किया कि मुझे भागवत श्रवण करना है तो फौरन से हमारी इंद्रियों ने भी काम करना शुरू कर दिया, हाथ में मोबाइल उठाया और एयरफोन लगाया और फिर कान जो है वो श्रवण करने के लिए प्रिपेयर हो गए। उसी तरह से अगर मन भागवत कथा में नहीं लग रहा है, भगवान से नहीं जुड़ रहा है, तो कोई और वस्तु, कोई भौतिक वस्तु की ओर आकर्षित होगा, तो फिर मन जब उधर आसक्त होगा तो शरीर भी उधर चला जाएगा, तो फिर जब शरीर उधर चला जाएगा फिर मन को भौतिक जगत से निकालना कठिन हो जाएगा। वास्तव में कामना ही जीव को इधर से उधर लेकर जाती है। इच्छा जब होगी ना तो जीव भटकना शुरू कर देता है। तो वेद व्यास जी के मन में अब और कोई कामना नहीं थी, सिर्फ एक ही इच्छा थी, क्या कि मुझे अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करना है। अब वो एकदम एकाग्र हो गए थे, अब बिल्कुल एकाग्र होकर जब वो ध्यान में लग गए, उनका मन निर्मल हो गया, तो आगे कहते हैं अपश्यत पुरुषम पूर्णम। अपश्यत का मतलब होता है देखा, किसको देखा, पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष अर्थात भगवान को देखा। यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि यदि हम भक्ति योग में अपने मन को लगाते हैं तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति योग के द्वारा ही परम सत्य का सम्यक दर्शन किया जा सकता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में, भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, भक्त्यामाम अभिजानन्ति। यदि मुझे देखना है, मुझे जानना है, मुझे प्राप्त करना है, तो उसकी केवल एक ही विधि है भक्ति योग। और भक्ति योग के द्वारा जब ध्यान टिकाया तो उन्होंने क्या देखा, अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष भगवान। यहाँ पर भगवान को पूर्ण पुरुष कहा गया, यानी व्यक्ति कहा गया है। वास्तव में ये आजकल जो संसार में बोले जाते हैं ये पुरुष है वो पुरुष, आजकल तो पूर्ण पुरुषोत्तम कोई साधारण व्यक्ति उसको भी बोला जाता है, लेकिन वास्तव में पुरुष केवल भगवान है, क्योंकि भगवान प्रकृति के, ब्रह्मांड के और जीव के अंतर्व्यामी है। यानी कि भगवान जो है वो जैसे शयन करते हैं प्रकृति में, ब्रह्मांड में शयन करते हैं, जीव के हृदय में शयन करते हैं, तो उनको पुरुष कहा जाता है, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो पूर्ण है, कंप्लीट है और वो कंट्रोलर है। ये आगे बताएंगे कि माया माया तदपाश्रयम, यानी कि माया जो है बहिरंगा शक्ति। अब ये पहले हम इसको पूर्ण पुरुष को श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बहुत सुंदर रीति से समझाया है कि भक्ति योग के द्वारा मन टिका कर हमें पूर्ण पुरुष का दर्शन होता है, ना कि आत्मा या परमात्मा का दर्शन करके या ब्रह्म ज्योति का, ब्रह्म तेज का दर्शन करके कभी भी एकाग्र आनंद, अत्यंतिक आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। और श्रील प्रभुपाद जी साफ साफ बताते हैं कि निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतीति करके कोई भगवत धाम को नहीं जा सकता। हमें यदि भगवान के धाम को प्राप्त करना है तो भगवान ने साफ साफ बता दिया यान्ति मध्याजिनोपिमाम, यदि मुझे प्राप्त करना है तो उसकी एक ही शर्त है कि तुम्हें मेरा भजन करना होगा, मुझसे प्रेम करना होगा, मेरी पूजा करनी होगी, मुझे शरणागति मेरी लेनी होगी, आपको मेरी शरण में आना होगा। और श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि पूर्ण दृष्टि तो भगवान है, पूर्ण दृष्टि तो भगवान है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में 7.19 में कहा गया, क्या बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा दुर्लभ, कि सबसे ज्यादा दुर्लभ तो वही है जो मेरा ध्यान करता है, वासुदेव को ही समक्ष सब कुछ समझता है। तो वास्तविकता, वास्तविक सिद्धि क्या है, भगवान तक पहुंचना। ये गलत नहीं है, परमात्मा और ब्रह्म का साक्षात्कार गलत नहीं है, लेकिन जो है इससे आगे उठना है जहाँ पर हमें साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं वेद व्यास जी के बारे में सुख गोस्वामी कहते हैं अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम से तदपान, कि उन्होंने देखा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को देखा और उसके साथ क्या देखा, माया को देखा। कौन सी माया को देखा, तदपाश्रयम, जो माया भगवान के वश में होती। भगवान बताते हैं दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्तिते। 7.14 में भगवान ने कहा कि माया भले ही उसको जीतना बहुत कठिन है, परंतु मेरी शरण में जो आ जाता है, क्योंकि माया मेरे कंट्रोल में है, तो जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया को बहुत ही जल्दी से पार कर देता है। वैसे तो भगवान की अनेकों शक्तियां हैं, लेकिन उनमें मुख्य क्या है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। और यहाँ पर जिस माया की बात की गई, अभी जो अंतरंगा शक्ति है उसको भी माया कह सकते हैं, परंतु वो आध्यात्मिक माया है। लेकिन ये बहिरंगा शक्ति है यहाँ पर जिसके बारे में कहा गया मायाम च तदपाश्रयम, कि उसने भगवान को भी देखा और माया जो भगवान के अंडर में होती है उसको भी देखा, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है उसको। अब ये बहिरंगा शक्ति के बारे में ही बात हो रही है, उसका क्या प्रमाण है? तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वो आगे के श्लोकों में आपको पता चल जाएगा। जो बहिरंगा शक्ति होती है वो इस भौतिक जगत में होती है, परंतु जो अंतरंगा शक्ति होती है वो आध्यात्मिक जगत में होती है और परम जगत में ही प्रकट होती है। जब कोई इस अंतरंग शक्ति की शरण में आता है तो भौतिक अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है, यहाँ तक कि जो आत्माराम है अर्थात समाधि में रहते हैं, जो बिल्कुल अब किसी भी वस्तु से जिनका कोई सरोकार नहीं होता है, कोई आसक्ति नहीं होती है, वे भी इस माया यानी कि जो आध्यात्मिक अंतरंग शक्ति है उसकी शरण ग्रहण करते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति या भक्ति योग इसी अंतरंग शक्ति का कार्य। जो हम भक्ति कर रहे हैं, जब हम कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं, कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं या कोई भी भक्ति का कार्य करते हैं, तो समझो हम उस समय अंतरंग शक्ति के आश्रय हैं। और जब हम कृष्ण से दूर हुए जिस समय, तो समझो माया का आक्रमण यानी बहिरंगा शक्ति का आक्रमण उस समय हो सकता है। इस प्रकार अपरा शक्ति या भौतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जब हम भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं तो वो भक्ति जो है वो सूर्य है और वो जो माया है भौतिक माया है वो अंधकार है। अब जहाँ पर सूर्य का प्रकाश हो वहां पर अंधकार नहीं टिक सकता। उसी तरह जब हम हृदय से भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, कथाओं को श्रवण करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, तो फिर वो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो जब जीव भगवान की अंतरंग शक्ति के शरण में रहकर भगवान की सेवा करता है, भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ता है, शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि निराकार ब्रह्म बोध से मिलने वाले आध्यात्मिक आनंद से वो कहीं ज्यादा बढ़कर है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि निराकार ब्रह्म तेज भी भगवान श्री कृष्ण से ही उद्भूत हुआ है, ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा हम। भगवान कहते हैं ब्रह्म तेज तो मुझसे निकला है और जिससे निकला है वो ब्रह्म तेज, जिसके अंदर इतना सुकून है, इतना आनंद है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो साक्षात भगवान आनंद का भंडार है, उनके अंदर कितना आनंद होगा। तो साक्षात श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई परम पुरुष नहीं हो सकता, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं। अभी आगे के श्लोकों में हमें ये सब पता चलेगा, तो हम श्लोक नंबर 5 पढ़ेंगे। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। यया सम्मोहितो जीव आत्मान त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। शब्दों का अर्थ यया सम्मोहितो जीव, यया मतलब जिससे, सम्मोहितो यानी मोहग्रस्त हो जाती, जीव जीव आत्माएं, आत्मानं स्व त्रिगुणात्मकं प्रकृति के तीनों गुणों से बंध अवस्था अथवा पदार्थ का फल, पर यानी दिव्य अपि के होते हुए भी मनुते मान लेता है अनर्थ अनचाही वस्तुएं तत् उससे कृतंच प्रतिक्रिया अभिप्रद्यते यानी भोक्ता है। अनुवाद, इस बहिरंग शक्ति से जीव आत्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी अपने को भौतिक पदार्थ मानता है और भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद, इस बहिरंग शक्ति से जीव आत्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी अपने को भौतिक पदार्थ मानता है और भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय हो। यहाँ पर भौतिकतावादी जीव के कष्ट के मूल कारण के साथ उसका उपचार और अभीष्ट चरम सिद्धि का भी संकेत किया गया है। इस सब का उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। जीव आत्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पाश से परे है, किंतु अब वह बहिरंगा शक्ति द्वारा बंदी बना दिया गया है। अतएव वे अपने आप को भौतिक पदार्थ मानता है। अतएव इस अपवित्र संगति से विशुद्ध आध्यात्मिक प्राणी प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट पाता है। जीव आत्मा ब्रह्मवश अपने आप को भौतिक पदार्थ मान देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसके सोचने अनुभव करने तथा चाहने की वर्तमान विकृत विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं है। तो भी सोचने अनुभव करने तथा चाहने का उसका अपना सामान्य तरीका होता है। जीव अपनी मूल अवस्था में सोचने अनुभव करने तथा चाहने की शक्ति से रहित नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता में भी पुष्टि होती है कि बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान अज्ञान से प्रच्छन्न रहता है। इस प्रकार इस सिद्धांत का बहिष्कार हो जाता है कि जीव आत्मा परम निराकार ब्रह्म है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जीव आत्मा अपनी मूल अबद्ध अवस्था में भी अपनी चिंतन शैली रखता है। वर्तमान बद्ध अवस्था बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण है, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर पृथक रहता आता है और मोहमयी शक्ति यानी माया पहल करती है। भगवान कभी नहीं चाहते कि जीव आत्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा भरमाया जाए। बहिरंगा शक्ति भी इस तथ्य से भली भांति परिचय होती है, किंतु वह अपनी मोहमयी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने का अकृतज्ञ जिम्मा लेती है। भगवान भ्रमिका शक्ति के कार्य में कोई दखल नहीं देते, क्योंकि उसके ये कार्य बद्ध जीव को सुधारने के लिए आवश्यक होते हैं। स्नेहिल पिता नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति उसकी संतान को प्रताड़ित करे, तो भी वह अपने उदंड पुत्र को सुधारने के लिए निष्ठुर व्यक्ति के संरक्षण में सौंप देता है। लेकिन साथ ही सर्वस्नेहिल सर्वशक्तिमान पिता बद्ध जीवों को भ्रमिका शक्ति यानी माया की चुंगल से छुटकारा दिलाने को उत्सुक रहता है। राजा अविज्ञाकारी नागरिकों को बंदी गृह की चार दीवारी के भीतर डाल देता है, लेकिन कभी कभी बंदी को राहत देने की इच्छा से वह स्वयं बंदी गृह में जाता है और उससे सुधरने के लिए कहता है, और उसके ऐसा करने पर वह बंदी को मुक्त कर देता है। इसी प्रकार परमेश्वर अपने राज्य से भ्रामिका शक्ति के राज्य में अवतरित होकर श्रीमद् भगवत गीता के रूप में राहत देते हैं, जहाँ पर वे व्यक्तिगत रूप से सुझाव देते हैं कि यद्यपि भ्रमिका शक्ति पर विजय पाना दुष्कर है, तो भी यदि कोई भगवान के चरण कमलों की शरण में आता है तो भगवान के आदेश से वह मुक्त हो जाता है। शरणागति विधि की पूर्ण परिपूर्णति संगति के प्रभाव से हो जाते हैं। अतः भगवान का सुझाव है कि संत पुरुषों की वाणी के प्रभाव से जिन्होंने वास्तव में परम की अनुभूति की है, वे लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न हों। बद्ध जीव को भगवान के विषय में सुनने में स्वाद मिलने लगता है और इस प्रकार श्रवण करने से ही वह भगवान के प्रति आदर भक्ति तथा आसक्ति के पद तक उठ जाता है। शरणागति विधि से सारी बात पूरी हो जाती है। यहाँ पर व्यास देव के अवतार रूप में भगवान ने यही सुझाव रखा है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान द्वारा बद्ध जीवों का दोनों प्रकार से उद्धार होता है, एक तो भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा दंडित होकर और दूसरी और भगवान द्वारा अंतः और बाह्य गुरु बनकर। भगवान प्रत्येक जीव के अंतःकरण में परमात्मा रूप में गुरु बनते हैं और बाहर से वे शास्त्रों संतों तथा दीक्षा से गुरु के रूप में गुरु बनते हैं। अगले श्लोक में इसकी अधिक पुष्टि बताई जाएगी, अधिक स्पष्ट व्याख्या होगी। वेदों में केनोपनिषद में देवताओं की नियंत्रित शक्ति के प्रसंग में भ्रमिका शक्ति की व्यक्तिगत अधिक्षता की पुष्टि की गई है। जहाँ पर भी स्पष्ट कहा गया है कि जीव आत्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप में नियंत्रित होता है, इस प्रकार जो जीव बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में आ जाता है वह भिन्न रूप से स्थित होता है। फिर भी भागवत के इस कथन से स्पष्ट है कि वही बहिरंगा शक्ति पूर्ण जीव भगवान के समक्ष निष्कृष्ट पद पर स्थित है। पूर्ण जीव या भगवान तक भ्रमिका शक्ति भी नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वह जीव पर ही अपना कार्य कर पाती है। अतः यह तो मात्र कल्पना है कि भ्रमिका शक्ति द्वारा भ्रमित होने के बाद परमेश्वर जीव बनते हैं। यदि भगवान तथा जीव एक ही श्रेणी में होते तो व्यास देव के लिए इसे देख पाना संभव होता और भ्रमित जीव को भौतिक दुख का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। अतएव अद्वैतवादियों द्वारा भगवान तथा जीव को एक ही श्रेणी में रखने का प्रयास सर्वथा ग्रहित है। यदि भगवान तथा जीव एक से होते तो श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का कष्ट न उठाते, क्योंकि ये सब भ्रमिका शक्ति की अभिव्यक्तियां होते। श्रीमद् भागवतम माया के चुंगल में कष्ट पाने वाली मानवता के लिए राम बाण दवा है। अतएव श्री वेद व्यास ने सर्वप्रथम बद्ध जीवों के वास्तविक रोग अर्थात बहिरंगा शक्ति द्वारा भ्रमित होने के निदान ज्ञात किए। उन्होंने उस पूर्ण परम पुरुष भगवान की के भी दर्शन किए जिसने भ्रमिका शक्ति बहुत दूर रहती है। यद्यपि उन्होंने रुग्ण बद्ध जीवों तथा रोग के कारण दोनों को देखा, रोग के उपचार की विधियां अगले श्लोक में समझाई जाएंगी। भगवान तथा जीव दोनों ही निसंदेह गुणात्मक गुणवत्ता की दृष्टि से एक हैं, लेकिन भगवान भ्रमिका शक्ति के नियंता हैं, जबकि जीव इसी भ्रमिका शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार भगवान तथा जीव एक साथ अभिन्न तथा भिन्न है। दूसरा अंतर इस प्रकार है, भगवान तथा जीव के बीच का संबंध दिव्य है, अन्यथा वे माया के चुंगल से बद्ध जीवों का उद्धार ना करते। इसी प्रकार जीव को भी भगवान के प्रति प्राकृतिक प्रेम तथा स्नेह को जगाने की आवश्यकता रहती है और जीव की यही सर्वोच्च सिद्धि है। श्रीमद् भागवतम में जीवन के इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बद्ध जीवों का वर्णन हुआ है। प्रभुपाद की जय हो। अत्यंत ही सुंदर श्लोक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के जो मुख्य विषय है ना, और जीव का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, माया के चुंगल में फंसना। और इस माया के चुंगल में जो जीव फंसा हुआ है, किस तरह से, क्यों फंसा हुआ है और उसके निकलने का उपाय वेदव्यासी अभी अपनी समाधि में देख रहे हैं। पहले उन्होंने पहले श्लोक में क्या देखा, वे कहते हैं भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणहितो मने। भक्ति योग से जब उनके हृदय जो बिल्कुल निर्मल हो गया, अपश्यत पुरुषम पूर्णम, उन्होंने पूर्ण पुरुषम को देखा, मायाम च तदपाश्रयम, और माया को भी देखा। और माया क्या कर रही थी, माया जब उन्होंने देखा, भगवान को भी देखा और माया को भी देखा, तो आगे क्या देखा, यया सम्मोहिता जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम। माया क्या कर रही थी कि वो लोगों को, जीव को मोहित कर रही थी। जिस माया के प्रभाव से जीव मोहित हो जाता था, और जीव मोहित होकर क्या करता था, आत्मानं त्रिगुणात्मकम। खुद जीव आत्मा है, आत्मा का मतलब होता है उसको इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये शरीर जो है वो कितनी चीजों से मिला हुआ है, पंच महाभूत, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, लेकिन जो मुख्य वस्तु है ना इसके अंदर, वो है गुण। तीन प्रकार के गुण हैं जिनके कारण ये कोई भी कार्य करता है, ये शरीर। तो आत्मा जो है वो त्रिगुणात्मकम, ये तीनों गुणों से बिल्कुल अलग है, भिन्न है, परंतु फिर भी यया सम्मोहितो जीव, क्योंकि जीव आत्मा बहिरंगा शक्ति के द्वारा सम्मोहित हो जाती है, तो अपने आप को शरीर समझकर, मतलब ये जानती है कि इन तीनों गुणों के असर में हूं मैं भी, आत्मा भी फिर उसी तरह से कार्य करने लगती है अपने आप को। हालांकि आत्मा जो है वो शरीर से भिन्न होते हुए भी जीव अपने आप को इन गुणों में बंधा हुआ महसूस करता है। परोपि मनु तेनर्थ तत्कृतम चाभिपद्यते। वास्तव में आत्मा के लिए कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं, भले ही ये संसार दुखों का घर हो, लेकिन आत्मा भिन्न है, क्योंकि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, वायु उसे सुखा नहीं सकती, जल उसे गला नहीं सकता, परंतु ये आत्मा जो है वो इस संसार में, इस शरीर में आकर सम्मोहित हो जाती है और अपने आप को गुणों में बंधा हुआ महसूस करती है, जिसके कारण वो भौतिक कष्टों के फलों को भोगती है। अगर वो अपने आप को वास्तविकता में आ जाए ना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तो मुझे तो इस भौतिक शरीर के कष्टों से कुछ लेना देना नहीं है, इस भौतिक शरीर की इच्छाओं से कुछ लेना देना नहीं है, इस भौतिक शरीर की वासनाओं से कुछ लेना देना नहीं, मेरा तो कार्य क्या है, भगवान की भक्ति करना। और अगर पूरा अपने आत्म साक्षात्कार का मतलब ही यही है कि देहात्म बुद्धि से बाहर आ जाना, लेकिन क्योंकि माया इतनी प्रबल है कि वो आत्मा को इस देहात्म बुद्धि से बाहर आने नहीं देती है, उसको मोहित कर देती है। श्री प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही सुंदर बात बताई है कि भगवान ये नहीं चाहते कि जीव बहिरंगा शक्ति के चुंगल में आकर अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाए, ये जीव की अपनी इच्छा है, जिसके कारण अब क्योंकि भगवान की जिम्मेदारी है कि जीव की इच्छा को पूरा करे। जीव भगवान को नहीं जानना चाहता, जीव अपने आप प्रभुत्व जताना चाहता है, तो उस जीव की उस इच्छा का पूरा करने का जिम्मा जो है वो माया ने उठाया है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें और भी भुलाती रहूंगी, भगवान से दूरी करती रहूंगी। तो भगवान भ्रमिका शक्ति के कार्य में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करते, भगवान चाहते नहीं, मतलब भगवान की इच्छा नहीं है कि जीव संसार में आके भगवान को भूल जाए, लेकिन अब जीव अपनी इच्छा से आया है और माया में माया के पाश में बंधना चाहता है, तो भगवान उसकी कोई भी है ना उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करते, उन दोनों का खेल देख रहे होते हैं, क्योंकि उसके कार्य बद्ध जीव को सुधारने के लिए आवश्यक होते हैं। जीव जानबूझकर आया है अपने संसार में, जीव अपनी इच्छा से आया है, तो उसने जब ये इच्छा की है तो यहाँ पर आकर वो कुछ कष्ट भोगेगा ना, जब बहिरंग शक्ति के थपेड़े खाकर बारम्बार उस जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेशों से जब बहुत ज्यादा थक जाएगा, चूर हो जाएगा, फिर उसे खुद ही एहसास होगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की कि मैं भगवान के धाम को छोड़कर इस नरक जैसे जीवन में आके गिरा हूँ। तब जब वो दुखी हो जाएगा, प्रताड़ित हो जाएगा, तो फिर वो वापस से उधर भगवान के पास जाने के लिए कार्य करेगा। श्री प्रभुपाद जी ने कहा, कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कोई मारे, कोई प्रताड़ित करे, कोई दंड दे, लेकिन जब बच्चा बहुत ज्यादा उदंड हो जाता है तो फिर भले कितना ही स्नेहशील पिता हो तो वो किसी निष्ठुर हाथों में उसे सौंप देता है, किसी निष्ठुर व्यक्ति को। जैसे हम देखते हैं संसार में भी, अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा उदंड हो जाता है तो उसे बोर्डिंग में माता पिता डाल देते हैं। माता पिता की इच्छा थोड़ी होती है कि वो अपने बच्चे से दूर रहें, लेकिन देख रहे हैं कि घर पे रहकर तो और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा, तो बोर्डिंग में जाएगा तो थोड़ा सा सुधर के आएगा, या फिर ट्यूशन में भेजते हैं, स्कूल में, घर पे अगर बच्चा पढ़ रहा है पेरेंट्स की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके, वो अगर आप सही अपनी स्थिति के हिसाब से कार्य कर रहे हो तो फिर कहीं पर आपको ऐसी जगह पे नहीं भेजा जाएगा जहां पर कि आपको कष्ट मिले। लेकिन क्यों भेजा जाता है? क्योंकि आप नहीं सुधर रहे हो, आपको इसलिए माता पिता मजबूर होकर आपको भेज रहे हैं। तो उसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान भी देखता है कि ये जीव वास्तव में मेरा अंश है, मेरी सेवा करना इसका वास्तविक धर्म है, ये नहीं कर रहा है तो ठीक है, जाए संसार में जाकर भोग भोगने के लिए जितना प्रयास कर सकता है करे, लेकिन साथ साथ वो भले ही माया के हाथ में उसे भेज देते हैं, लेकिन भगवान की सर्व स्नेहशीलता, सर्वशक्तिमत्ता, भगवान इतने महान हैं कि बद्ध जीव को भ्रमिका शक्ति के चुंगल से छुटकारा दिलाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि कैसे मैं इनको वापस से इनके वास्तविक स्थान तक पहुंचाऊं। जैसे एक राजा होता है, वो जो भी ना अपराधी होते हैं उनको जेल में डाल देता है और जेल के भीतर उनको बहुत कष्ट मिल रहा होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, राजा खुद आता है उस जेल में और फिर कैदियों को बोलता है, देखो अगर आप लोग ने ये कार्य सही तरह से किया तो मैं आपकी सजा को माफ कर दूंगा। उसी तरह से भगवान भी इस कैद खाने में आते हैं। भगवान को कर्मों का, भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मेरे तो मुझे कोई कर्मों के बंधन के कारण मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ और ना ही मेरे लिए कोई कर्तव्य है, लेकिन फिर भी भगवान संसार में आते हैं बद्ध जीवों को जो कि कष्टों में गिरे हुए हैं, बहिरंगा शक्ति के थपेड़ों में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, उन्हें ये सुझाव देने के लिए आते हैं कि जब तक तुम इस भ्रमिका शक्ति अर्थात माया के जंगल से बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम अपने कष्टों से छूट नहीं सकोगे, और माया से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि ये माया केवल मेरे वश में है। अगर तुम मेरी शरण में नहीं आओगे तो तुम सदैव माया के चुंगल से कभी दैवी ये मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है, तुम्हारे प्रयासों से तुम नहीं पार कर पाओगे, इसलिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। तो इस तरह से भगवान आते हैं उस जेल खाने में, कैद खाने में आते हैं और जीवों को भगवद गीता रूपी राहत प्रदान करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि आपको किसी शुद्ध गुरु का आश्रय लेना है और उस उनके द्वारा, जो शुद्ध गुरु होंगे, जो तत्वदर्शी होंगे, उनके द्वारा जब आप श्रवण करोगे तो श्रवण करने से ही भगवान के प्रति आदर, भक्ति तथा आसक्ति के पद तक उठा जा सकता है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने श्रवण की बहुत महत्ता बताई, क्योंकि जब तक हम किसी शुद्ध वैष्णव से भगवान की लीलाओं को भगवान के गुणों को, भगवान की महिमा को श्रवण नहीं करते, तब तक हम भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। इसीलिए हम देखते हैं जो जीव भगवान के विषय में शुद्ध वैष्णवों से श्रवण नहीं करते, वो जब मंदिर में भी आते हैं ना, तो भी भगवान से कंप्लेन करते हैं कि भगवान उसने मेरे साथ ये किया, ये हुआ मेरे साथ, मैंने बचपन से लेकर किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे साथ सब ऐसा करते हैं। लेकिन जब वैष्णवों के द्वारा हम अपने वास्तविक स्थिति को जानते हैं कि हम कितने अपराधी हैं, ये भगवान की कितनी कृपा है कि इतने करोड़ों अपराधों के बावजूद भी हमें ये मौका दिया कि हम भगवान का नाम ले सकते हैं। आज का जीव जिसने भगवान के पास जितना पावर है, उतना ही भगवान के नाम में है, भगवान की कथा में। अर्थात जो भगवान का नाम ले रहा है या भगवान की कथा श्रवण कर रहा है, भगवान ने अपने आप को उसको सौंप दिया है। मतलब कितनी महान है वो भगवान, जैसे हम जैसे नीच व्यक्तियों को ये अधिकार दिया है कि तुम मेरा नाम ले सकते हो, मेरी कथा का श्रवण कर सकते हो। तो जब हम किसी शुद्ध वैष्णव से सुनते हैं, तभी हम देखते हैं कि भगवान ने हम पर कितना उपकार किया। हमने किया क्या कृष्ण के लिए? वरना तो सदैव आता कि भगवान मैंने तो कितना अच्छा किया, सबके साथ मुझे बुरा हमेशा मिला। लेकिन जब तक हम किसी शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आकर ये नहीं जानते हैं कि हम कितने अपराधी हैं, इस संसार में होने का कारण, इस संसार में अगर कोई आया है तो इसका मतलब यही है कि वो अपराधी है, इसीलिए आया है, इसीलिए भुगतने के लिए आया। गुरु को छोड़ के जो वैष्णव शुद्ध वैष्णव है, वो तो केवल हमें गाइडेंस के लिए भगवान उन्हें भेजते हैं कि बद्ध जीवों की रक्षा, उनको वापस से मेरे धाम तक पहुंचाने का रास्ता दिखाने के। लेकिन जो हम जैसे साधारण पतित लोग होते हैं, उसका इस संसार में आने का कारण यही है कि उसने ऐसा अपराध किया कि उसके बाप ने उसे अपने घर से निकाल कर यहाँ दंडित होने के लिए छोड़ दिया। श्रील रूपाल जी ने एक और भी बहुत ही सुंदर बात बताई कि इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान द्वारा बद्ध जीवों को दोनों प्रकार से उद्धार होता है। यानी जब संसार में आता है तो एक तो पहले क्या होता है कि बहिरंग शक्ति द्वारा उसे दंडित किया जाता है, जिसके कारण अब किसी को दंड मिलता है तो सुधरने का सोचता है ना कि अभी मुझे इतनी सजा मिल रही है, अब मैं दोबारा से ये गलती नहीं करूंगा, कभी प्रभुत्व नहीं जताऊंगा, दोबारा कभी संसार में आने के विषय में नहीं सोचूंगा, आनंद केवल कृष्ण चरणों में प्रीति लगाने से ही मुझे प्राप्त होगा, भौतिक वस्तुओं का यदि कितना ही समोह करूं तो केवल और केवल दुख अर्जित होगा, तो फिर मैं इन भौतिक वस्तुओं की ओर से अपनी आसक्ति को खत्म करूंगा। तो एक तो बहिरंग शक्ति उसे दंडित करती है, और दूसरा उसका कल्याण कैसे होता है कि भगवान गुरु के माध्यम से हृदय के अंदर स्वयं बैठ जाते हैं, चित्त गुरु के बनकर हृदय के अंदर परमात्मा रूप में बैठ जाते हैं और अंदर से ज्ञान देते हैं कि आपको ये करना है। हर वक्त हमें, जब भी हम कभी कुछ बुरा कार्य करने वाले होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से हमें हृदय में ये बात आती है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जीव क्या करता है, उस भगवान की बात को अनसुना कर देता है। तो भगवान प्रत्येक जीव के अंतःकरण में परमात्मा रूप में गुरु बनते हैं, और बाहर से वे शास्त्रों, संतों तथा दीक्षा से गुरु बनते हैं। और इस तरह से जीव का दोनों प्रकार से कल्याण, इस संसार में एक तो पहले दंडित करते हैं जिससे वो पहले से खौफजदा हो जाता है कि अभी मुझे अपराध नहीं करना, और उसके बाद क्या होता है, भगवान गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा इस संसार में उसका कल्याण करते हैं। यहाँ पर एक और चीज श्री प्रभुपाद जी ने सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में बहुत ही क्लियर की है कि यदि कोई ये सोचता है कि ये जो बहिरंग शक्ति के द्वारा भ्रमित होकर भगवान इस संसार में दोबारा से जीव बनते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जो भगवान कृष्ण के इस संसार में जो आते, भगवान बताते हैं 9.11 में कि भगवान कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तु मम भूत महेश्वरम। भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य शरीर लेकर संसार में आता हूँ तो बेवकूफ लोग मेरा उपहास करते हैं, वो मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये तो मात्र एक कल्पना है कि भगवान भ्रमिका शक्ति द्वारा भ्रमित होकर इस संसार में जीव बनते, क्योंकि भ्रमिका शक्ति या ये बहिरंग शक्ति चाहे कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, भले लोगों को, जीव को तो उसका कंट्रोल केवल जीव तक ही है, वो केवल जीव पर ही अपना कार्य कर सकती है, भगवान के तो वो कंट्रोल में है। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, ये जो वेद व्यास जी हैं वो देख रहे हैं उस शक्ति को, उन्होंने क्या देखा है कि मायां च तदपाश्रित पाश्रय, कि वो माया जो है वो भगवान के आश्रय है, ऐसा नहीं कि भगवान माया के आश्रय है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अद्वैतवादी जो है वो क्या कहते हैं कि जीव और भगवान जब संसार में होते हैं तो एक ही श्रेणी में हो जाते हैं, तो उनका एक ही श्रेणी में मतलब वो एक ही लेवल के हो जाते हैं। संसार में आकर भगवान भी भ्रमित हो जाते और जीव भी भ्रमित हो जाते, ये तो सर्वथा घृणित है सोच। यदि भगवान तथा जीव एक से होते तो श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का कष्ट ना उठाते। फिर सुखदेव गोस्वामी को क्या जरूरत थी या वेद व्यास जी को क्या जरूरत थी? अगर भगवान इसी लेवल पर हैं, जिस लेवल पर जीव है, तो फिर इनको कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? इतने बड़े बड़े शास्त्र लिखने की क्या जरूरत थी? श्री प्रभुपाद जी को क्या जरूरत थी इतने बड़े बड़े तात्पर्य लिखने की? भगवान की एक अलग लेवल है भगवान का। भगवान माया के चुंगल में कभी नहीं फंसते, बल्कि जीव आत्मा को माया के चुंगल से निकालने का एकमात्र तरीका क्या है कि वो भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करे। और ये कैसे हम भगवान की शरण में जा सकते हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर बताया कि श्रीमद् भागवतम माया के चुंगल के कष्ट चुंगल में से कष्ट पाने वाले मानवता के लिए राम बाण है। राम बाण का मतलब है अचूक है, जिसका कभी भी निशाना नहीं चूकेगा। अगर हम श्रीमद् भागवतम का प्रेम से श्रवण करेंगे तो अवश्य माया के चुंगल से बच जाएंगे, क्योंकि माया वहां पर नहीं आ सकती। श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है, साक्षात भगवान है, और जहां पर भगवान है, भगवान सूर्य है, और माया वहां पर कभी नहीं आ सकती। माया का अधिकार नहीं है जहां पर कि वो भगवान के राज्य में आ सके। तो यहां पर हमने देखा कि वेद व्यास जी ने अपनी जब वो स्थिर होकर समाधि में, तो उन्होंने क्या देखा? माया को देखा, रुग्णबद्ध जीव जो कि भ्रमित हो रहा है माया के द्वारा, उसको देखा और उस परम पुरुष भगवान के भी दर्शन किए जिनसे यह माया बहुत दूर रहती है। उन्होंने रुग्ण बद्ध जीव तथा रोग के कारण दोनों को देखा। कारण क्या है? माया। बद्ध जीव रोगी है और भगवान जो है उसकी शरण में जाकर जीव जो है वो उस माया से मुक्ति पा सकता है। तो वास्तव में जो रोग के उपचार की विद्या है वो आगे जैसे तैसे, ये जो ये तीन चार श्लोक जो अभी हम पढ़ेंगे ना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। और पूरा श्रीमद् भागवतम का संपूर्ण विषय इन दो तीन श्लोकों में है, स्पेशली है ना 4, 5, 6, इनमें बहुत ही सुंदरता से बताया गया है। हमें इसको ड्राई टॉपिक नहीं समझना है, ये वास्तविकता है और इसी को समझ कर हम अपना उद्धार कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि जीव और भगवान हालांकि दोनों गुणों में एक समान है, क्योंकि वो दोनों ही तीनों गुणों से दूर है। जीव भी शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है। जीव भी सदैव आनंद सच्चित आनंद है और क्योंकि वो भगवान का अंश है, तो उनके गुण एक जैसे हैं। लेकिन फर्क क्या है कि जीव आत्मा जो है वो बहिरंग शक्ति के दबाव में आ जाता है, लेकिन भगवान क्या है? बहिरंग शक्ति के नियंत्रित करने वाले हैं, बहिरंग शक्ति को अपने कंट्रोल में। जीव माया के कंट्रोल में है और माया भगवान के कंट्रोल में। इस प्रकार भगवान और जीव एक साथ भिन्न तथा अभिन्न है। जीव और भगवान की क्वालिटीज एक जैसी हैं, लेकिन जीव क्या है? क्योंकि माया के कंट्रोल में आ जाता है इसलिए भिन्न हो गया, और माया जीव के अंदर भी वही क्वालिटीज हैं इसलिए अभिन्न हो गया। दूसरा अंतर इस प्रकार है कि भगवान तथा जीव के बीच का संबंध दिव्य है, अन्यथा वे माया के चुंगल से बद्ध जीवों का उद्धार न करते। ये जो जीव और भगवान जो है वो आपस में उनका जो संबंध है वो दिव्य है, और बलि जीव कितना ही किसी भी स्थिति में चला जाए भगवान सदैव उसका साथ देता है, और ये न कहना प्रकार है उसको इस माया के चुंगल से उद्धार करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे भगवान सदैव जीव पर किसी न किसी प्रकार से कृपा करते ही रहते हैं। भगवान कभी भी ये नहीं कहते कि आपने कितना ज्यादा अपराध किया है इसलिए आप कुत्ता बन गए हो तो अभी मैं आपको सूर्य प्रकाश नहीं दूंगा। कभी बोलते हैं आपको वायु प्रोवाइड नहीं की जाएगी, आप मच्छर बने हो, कभी किसी किसी भी जानवर को भगवान ने ये नहीं कहा, हालांकि उसके अंदर भी जीव है। कभी भी ये नहीं कहा कि क्योंकि तुमने इतने घृणित कार्य किए हैं कि तुम्हें गटर का कीड़ा बना दिया गया है, अब तुम्हें मैं पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए नहीं दूंगा। हर एक जीव की भगवान रक्षा करते हैं, जिस भी योनि में होता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसका साथ देते हैं। तो जीव जब संसार में आता है मनुष्य बनकर, तो उसको अपना एक कर्तव्य निभाना है कि उसका क्या कर्तव्य है कि वो वास्तविक प्रेम जो भगवान के प्रति हमारा स्नेह है उसको जगाने की जगाए, उसको जगाने का प्रयास करे। और यही वास्तविक सिद्धि है कि हम भगवान के प्रति अपने हृदय के अंदर सोए हुए प्रेम को जगाएं। और श्रीमद् भागवतम के द्वारा ये संभव है, इसलिए हम सदैव हमें सदैव श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, नित्यम भागवत सेवन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी साधना को दृढ़ कर सकूं। जय श्री।